ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10वां अध्याय क्रमांक 23। इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद। श्लोक क्रमांक 20 एवं 21। निषिद्यमान पतिभिः भ्रातृभिर्बन्धुभिः सुतै भगवत्युत्तम श्लोके दीर्घश्रुतदृताशया यमुनोपवने शोक नवपल्लवमण्डिते विचरन्तं वृतं गोपै साग्रजं ददृशो स्त्रियः निषिद्यमाना पतिभिः भ्रातृभिर्बन्धुभिः सुतै भगवत्युत्तम श्लोके दीर्घश्रुतदृताशया यमुनोपवने शोक नवपल्लवमण्डिते विचरन्तं वृतं गोपै साग्रजं ददृशु स्त्रियाः निषिद्यमाना पतिभिः भ्रातृभिर्बन्धुभिः सुतै भगवत्युत्तम श्लोके दीर्घश्रुतदृताशयाः यमुनोपवने शोक नवपल्लवमण्डिते विचरन्तं वृतं गोपै साग्रजं ददृशु स्त्रियाः।
Thank you.
निषिद्ध्यमाना मना की गई पति भी अपने पतियों द्वारा, भ्रातृ भी अपने भाइयों द्वारा, बंधु भी अन्य संबंधियों द्वारा, सुतहि तथा अपने पुत्रों द्वारा, भगवती भगवान के प्रति उत्तम श्लोके दिव्य स्तुतियों से वंदित, दीर्घ दीर्घ काल तक श्रुत सुनने के कारण धृत प्राप्त किया गया आशया, जिनकी आशाएं यमुना उपवने यमुना के तटीय बगीचे में अशोक नवपल्लव अशोक वृक्ष की कलियों से मंडित अलंकृत विचरंतम घूमते हुए व्रतम घिरे हुए गोपई ग्वाल बालों से सअग्रजम अपने बड़े भाई सहित ददृशु देखा स्त्रियः उन स्त्रियों ने। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। यद्यपि उनके पतियों भाइयों पुत्रों तथा अन्य संबंधियों से उन्हें जाने से रोका, किंतु कृष्ण के दिव्य गुणों का दीर्घ काल से श्रवण करते रहने से कृष्ण को देखने की उनकी आशा विजयी हुई। उन्होंने यमुना नदी के किनारे अशोक वृक्षों की कपोलों से सुशोभित एक बगीचे में ग्वाल बालों तथा अपने बड़े भाई बलराम के साथ विचरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण को देख लिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप। हरे कृष्णा। दशम स्कंद का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों के द्वारा हमें जो शिक्षाएं दे रहे हैं, हमारी साधना भक्ति में अग्रसर होने के लिए, वो अति महत्वपूर्ण है। और हम पिछले रविवार भगवान द्वारा दी गई पांचवी शिक्षा पर थे, जहां भगवान ने अब अपने सखाओं को, ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं, उनके पास भेजा भिक्षा मांगने हेतु, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने तिरस्कृत कर ग्वाल सखाओं को वापस लौटा दिया। भिक्षा देना तो दूर, अपना सर्वस्व देना तो दूर, उन्होंने ग्वाल सखाओं को तिरस्कृत कर वहां से भगा दिया। तो भगवान ने ये पांचवी शिक्षा में हमें सिखाया कि भक्ति का जो पथ है, उसमें हर समय एक विकल्प भगवान प्रस्तुत कर देते हैं, पर्याय, अल्टरनेट सॉल्यूशन। जैसे कहा गया है इन भक्ति, इफ प्लान ए डजंट वर्क स्टिल देर आर 25 अल्फाबेट्स लेफ्ट। तो यहां पर प्लान ए वर्क नहीं किया, तो भगवान ने कहा प्लान बी, कि जो उनकी पत्नियां हैं उनके पास जाओ। अब ये पूछा जाए कि क्या भगवान का ये प्लान ए था या प्लान बी था? कौन सा? ब्राह्मण पत्नियों के पास सखाओं को भेजना, क्या भगवान का मुख्य प्लान था या अल्टरनेट प्लान था? क्योंकि इस अध्याय का शीर्षक क्या है? ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार। तो भगवान का प्लान ये यही था कि मुझे मेरी कृपा उन पत्नियों को देनी है, क्योंकि आज के श्लोक से पता चल रहा है कि ये जो ब्राह्मणों की पत्नियां, ये भगवान की शुद्ध भक्ति में लगी थी, वो ब्राह्मण नहीं लगे थे। तो भगवान प्रायोरिटी किसको देते हैं? जो शुद्ध भक्ति में लगे हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं। इनका भी उद्धार किया, ब्राह्मणों का भी उद्धार किया, परंतु ये सेकेंडरी थे, सेकेंडरी पार्टी हुए। तो यहां पर क्या बताया गया है? दीर्घ श्रुत द्रुत आशय, क्योंकि दीर्घ काल तक इन्होंने श्रवण किया था भगवान के गुणगान का, भगवान के गुणों का, जिसके वजह से द्रुत आशय, इनके अंदर ये दृढ़ व्रत, एक आशा उत्पन्न हो गई थी कि अवश्य ही कृष्ण बलराम का दर्शन होगा उन्हें। केवल श्रवण करने से ऐसी आशा, ऐसा दृढ़ व्रत उनके अंदर। तो हमने पिछले रविवार को प्रारंभ किया था भक्ति के 8 आभूषण। सर्वप्रथम सर्व व्यापकता, वर्सटैलिटी ऑफ भक्ति। तत्पश्चात दूसरा आभूषण भक्ति का है सहजता। सहजता का अर्थ है कि भक्ति कोई भी किसी भी अवस्था में सहज पूर्वक कर सकता है। जैसे दक्षिण भारत के एक भगवान के भक्त हुए, कवि हुए, जिन्होंने अपने एक भजन में, इनका नाम है पुरंदर दास, इन्होंने अपने एक भजन में ये कहा है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति इतनी सहज है कि यदि कोई लेट कर भी भगवान का नाम लेता है तो भगवान बैठ कर सुनते हैं। लेटे लेटे, पूरा लंबा हो चुका है, लेटे लेटे यदि वो भगवान का नाम ले रहा है तो भगवान बैठ कर सुनते हैं। यदि वो बैठ कर भगवान का नाम ले तो भगवान खड़े होकर सुनते हैं, और यदि वो खड़े होकर नृत्य करते हुए भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे, तो भगवान उसे आलिंगन कर लेते हैं उसका। MH15CD5522 रॉन्ग पार्किंग, MH15AH7164 ये भी रॉन्ग पार्किंग है। तो जिनके भी ये दो रथ हैं, तो पुरंदर दास अपने भजन में कहते हैं कि भगवान की भक्ति इतनी सहज है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि कल से हम लेट कर भगवान का नाम लें। बंबई में एक छोटा सा लड़का ये सुनने के बाद वो दूसरे दिन लेट कर भगवान का नाम ले रहा था, तो उसकी माँ ने पूछा कि क्या कर रहे? तो उसने कहा कि भगवान को तकलीफ क्यों दूं मैं, क्योंकि अगर मैं बैठ कर लूंगा तो भगवान को खड़े होना पड़ेगा, तो इसलिए मैं लेट कर ले रहा हूं कि भगवान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं लेट कर ले रहा हूं, भगवान बैठ कर सुने ना। तो भगवान की भक्ति कितनी सहज है। तो ये भक्ति देवी का दूसरा आभूषण सहजता। तीसरा आभूषण भक्ति देवी के ऊपर है सरलता, कि भक्ति सहज होने के साथ साथ सरल भी है। अब ये आवश्यक नहीं कि कोई चीज बहुत सहज है तो बहुत सरल भी हो। जैसे कि ये कहा गया है कि जल जो है वो सब जगह वातावरण में व्याप्त है। वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द एटमॉस्फेयर, बट टू गेट दैट वाटर यू कैन नॉट जस्ट ओपन योर माउथ एंड क्वेंच योर थर्स्ट, दैट वाटर इन द एटमॉस्फेयर विल क्वेंच योर थर्स्ट। एक तरीका है, उसी जल को प्राप्त करने का एक तरीका है। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की। तो भक्ति की सहजता और उसके साथ साथ भक्ति की सरलता। यहां पर भक्ति की सरलता का अर्थ है कि भगवान बहुत ही सरल तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं करना पड़ता। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें करनी पड़ती हैं। ऐसे ऐसे यज्ञ होते हैं, महाचंडी यज्ञ, काल सर्प यज्ञ, योग इत्यादि, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये सारी चीजें। परंतु देखिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन यज्ञ, कि वो सहज भी है और भगवान बहुत सरल तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहां पर सहजता का अर्थ हुआ भक्ति कैन बी परफॉर्म्ड एट ईज, वेरी इजीली, और सरलता का अर्थ हुआ भक्ति देवी इज वेरी सिंपल, या भक्ति इज वेरी सिंपल, देयर इज सिंप्लिसिटी। इसके पश्चात चौथा आभूषण भक्ति देवी का है सुलभता, कि भक्ति देवी अपने आप को बहुत सुलभ तरीके से, सुलभता का इंग्लिश होगा एक्सेसिबल, वेरी इजीली एक्सेसिबल। यदि योग साधना, ज्ञान योग इत्यादि कोई करना चाहता है तो हर जगह पर उसको उसके केंद्र नहीं मिलेंगे। योग करने के लिए भगवान ने कहा है सबसे पहले ऐसा वन ढूंढना होगा जो कि कृत्रिम चीजों से अनभिज्ञ है। हमने देखा कि हिमालय, हम लोग गए थे गंगोत्री गोमुख, गोमुख की चढ़ाई हम कर रहे हैं 18 किलोमीटर गंगोत्री से ऊपर हिमालय पर, और वहां पर हमने देखा कि हिमालय की उस चोटी पर पेप्सी और कोक के कैन पड़े हुए हैं। तो यदि किसी को योग साधना सिद्ध करनी है तो भगवान ने जो उसके नियम बताए हैं कि एक ऐसा वन ढूंढना कि जो हर प्रकार के विक्षेप से दूषित ना हो, तो कितना कठिन है। और प्रभुपाद की कृपा से भक्ति कितनी सुलभ हो गई है कि इस्कॉन या इस्कॉन के भक्त कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएंगे, किसी न किसी रूप में। कई बार भक्त डर भी जाते हैं कि अरे इस्कॉन के भक्त सब जगह व्याप्त हैं, कि कहीं पर जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, कुछ भी खाने जाएंगे, कुछ भी देखने जाएंगे, तो पता लगा कि कोई पीछे से बोला हरि बोल प्रभु आप क्या कर रहे हैं। तो भक्ति की सुलभता, अब इसके कितने सारे हम उदाहरण दे सकते हैं, परंतु यहां पर हम अगर अब ये एक एक अंग लेंगे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे प्रसंग को पूरा करने में। तो आज हम ये आठ जो आभूषण भक्ति के हैं उसे किसी दूसरे संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। फिर पांचवा आभूषण भक्ति का है सर्वज्ञता, कि जब कोई भक्ति करता है तो उसे बहुत मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति की सर्वज्ञता का अर्थ है कि भगवान ने कहा है वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः, कि जितने वेद जो कि भगवान द्वारा उद्धृत हैं उनके अंत को जो जान लेता है उसने पूरे वेद के वांग्मय को जान लिया है। और कौन है? भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति, यही पूरे वेद के वांग्मय के अंत है, वेदांत। और हम देखते हैं कि वो श्लोक है अहो बत स्वपचो तो गरियान यद जिह्वागरे वर्तते नाम तुभ्यम, कि जिसके जिह्वा के अग्र भाग पर भगवान का नाम आ चुका है, उसने बड़े बड़ी तपस्या कर ली है, उसने सारे वेदों का शास्त्रों का अध्ययन कर चुका है वो, और उसके पश्चात वो अब इस स्थिति में आया है कि भगवान का जो नाम है उसके जिह्वा पर आ रहा। तो इससे समझ में आता है कि ये जो भक्ति का आभूषण है सर्वज्ञता। छठा आभूषण भक्ति का है सर्वशक्तिमता। कई बार लोगों को लगता है कि भक्ति यदि इतनी सहज है, इतनी सरल है, तो क्या उसके अंदर शक्ति है? क्योंकि जो चीज बहुत सरलता से मिल जाए, सहजता से मिल जाए, सुलभता से प्राप्त हो जाए, हो सकता है उसके अंदर कोई शक्ति न हो। परंतु भक्ति इन सब के साथ साथ शक्तिमता है, न केवल शक्तिमता, सर्व शक्तिमता। और वो कैसे? क्योंकि जितने हमारे अनगिनत जन्मों के पाप हैं, इन पापों से छुटकारा पूर्ण रूपेण न तो ज्ञान योग दिला सकता है, न अष्टांग योग, न और कोई योग, केवल केवला भक्ति। छठे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं, केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति ही हमारे सारे पाप कर्मों से हमें छुटकारा दिला सकती है। और जो हमारे सारे पाप कर्मों से हमें छुटकारा दिलाए, इससे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं हो सकता। तो ये है सर्वशक्तिमता। सातवां आभूषण भक्ति का है समशुद्धता, कि हमारे पापों से हमको उनका निवारण करने के पश्चात हमारे अंदर शुद्धता लाना, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। और न केवल शुद्धता बल्कि सम्यक शुद्धता, ये भी भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण आभूषण है। और अंतिम आभूषण सर्व उपकारिता, कि न केवल उस व्यक्ति को भक्ति शुद्ध करती है, पापों से उसका निवारण करवाती है, बल्कि उसके द्वारा की गई भक्ति उससे जो भी संबंधित हो उसका उपकार हो जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज ने भक्ति की और प्रहलाद महाराज के 21 पीढ़ियां ऊपर 21 पीढ़ियां नीचे, अभी तक जो आई भी नहीं थी, प्रहलाद महाराज तो केवल 5 वर्ष के थे, तो ऊपर नीचे ये 21 पीढ़ियों का उद्धार भगवान ने पहले से ही कर दिया। तो इसे समझ में आता है कि एक, अब योग साधना में ये नहीं बताया गया कि यदि कोई योगी है उसने योग साधना से अष्ट सिद्धि प्राप्त कर ली तो 21 पीढ़ियों को भी अष्ट सिद्धि प्राप्त हो गई, नहीं। उसने व्यक्तिगत रूप से अथक प्रयास कर अष्ट सिद्धि प्राप्त की होगी, ये जरूरी नहीं कि उसके वंशज उनको उसका फल मिल रहा है। परंतु भक्ति सर्व उपकारिता होने के कारण जो भी ऐसे शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है उसका उपकार निश्चित है। अब देखिए, मैं सोच रहा था कि जैसे भक्ति के ये 8 आभूषण हैं, किसी के शरीर के ऊपर आभूषण होते हैं तो वो आभूषणों के द्वारा सुसज्जित रहता है, परंतु जैसे भक्ति देवी सुसज्जित है 8 आभूषणों से, वैसे माया देवी भी सुसज्जित है माया देवी के 8 आभूषणों से। तो आज हम ये 8 आभूषणों की चर्चा किसके संदर्भ में करेंगे कि हाँ, ये 8 आभूषण सुनने के पश्चात बहुत तसल्ली होती कि हाँ मैं भक्ति मार्ग में हूं, इतने भक्ति के गुण बताए गए हैं, 8-8 गुण बताए गए हैं, सुलभ है, सरल है, सहज है इत्यादि, तब तो फिर डर किस बात का। निश्चित है इनमें से कोई तो एक गुण मेरे पर कृपा कर मुझे भगवत धाम ले जाएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 नहीं, कोई एक तो। परंतु इन 8 भक्ति देवी के आभूषणों को चुनौती देने के लिए माया देवी ने भी 8 आभूषण पहन रखे हैं, और इसलिए एक एक भक्ति देवी का जो आभूषण है उसके लिए माया देवी का एक आभूषण चुनौती है। क्या है? चैलेंज। एवरी ऑर्नामेंटेशन ऑन भक्ति देवी हैज अ चैलेंज, करस्पॉन्डिंग चैलेंज प्रेजेंटेड बाय माया देवी थ्रू हर ऑर्नामेंट्स। जैसे अगर हम ये शरीर लें अपना, तो प्रकृति ने जब हम ये शरीर को लेकर आते हैं, जब पैदा ही होते हैं हम, तो ये शरीर स्वस्थ रहता है। खैर आजकल बच्चे भी पैदा होते ही बीमार भी होते हैं, वो किसी दूसरे कारण के वजह से, कि शायद माता पिता कुछ बीमार हो तो उनसे कुछ बीमारी आ जाती है। परंतु साधारणतः जब ये मशीनरी एकदम फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग होता है इस मशीन का, है ना, अभी कन्वेयर बेल्ट से बाहर आया फिनिश्ड प्रोडक्ट, जस्ट जन्मा है अभी ये शरीर, तो सब कुछ फ्रेश रहता है इसके अंदर। और अगर हम हमारे शरीर में जो अंग हैं उनको आभूषणों से उसकी तुलना करें कि हमारा आभूषण जो आप किसी टकले ज्वेलर्स के पास जाकर लेते हैं वो नहीं, ये शरीर अपने आप में, ये शरीर के जो अंग हैं वो एक आभूषण है। आंखें, ये नाक, कान, चेहरा, हाथ इत्यादि, ये सारे हमारे शरीर के आभूषण हैं। तो अब देखिए, अगर हम एक एक आभूषण को लें शरीर के, तो इस भौतिक संसार में शरीर के इस एक एक अंग या आभूषण के लिए एक चुनौती प्रकृति ने प्रस्तुत कर रखी है, जिसे हम कहते हैं बीमारियां। तो बीमारियां क्या है, एक तरफ हमारे शरीर के अंग हैं, दूसरी तरफ बीमारियां क्या है, चुनौती है। यदि आंखों को ले तो आंखें जो हैं वो हमें दिखाती हैं सब कुछ साफ साफ, परंतु आंखों को यदि कोई पूछे कि हे आंखें तुम्हारे लिए चुनौती क्या है, तो आंखें क्या कहेंगी, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, ये एक चुनौती है आंखों के लिए, चुनौती है। तो ये जो बीमारी, कौन सी बीमारी, कैटरैक्ट की बीमारी, आंखों के लिए चुनौती है। आंखें जो हमारी इतनी सुंदर दिखती हैं, लोग इतनी कविताएं लिखते हैं आंखों के बारे में, झील सी नीली आंखें, परंतु होता क्या है, ये झील सी नीली आंखों में कई बार कीचड़ दिखता है थोड़ा बीच में, कि झील की तरह झील में भी कीचड़ आ सकता है, वो झील के लिए चुनौती है। तो आंखें जो कि एक आभूषण है हमारे चेहरे का, उसके ऊपर चुनौती आ जाता है ये कैटरैक्ट का। फिर अगर हम और भी अंग लें, ये हमारे कान लें, तो इसके अंदर भी वो वैक्स जमा हो जाता है। एक भक्त, वो कुछ साल पहले, उनको अचानक उनको सुनाई नहीं देने लगा, हमारे ब्रह्मचारी उनको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था, तो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने उनके कान में से इतना वैक्स बाहर निकाला, और जैसे ही इतना वैक्स बाहर निकाला सब साफ साफ सुनने लगा उनको, तो कुछ गड़बड़ नहीं थी, कान वैसे का वैसा स्वस्थ था, लेकिन कान के ऊपर ये जो आवरण आ गया उस वैक्स का, तो उस आवरण के वजह से, वो आवरण क्या था, अब कान के लिए चुनौती, ईयर ड्रम के लिए चुनौती था वो वैक्स, आंखों के लिए चुनौती कैटरैक्ट, कानों के लिए ये। यदि हम हमारी हड्डियां लें जो कि हमें इतना मदद करती हैं सब कुछ काम करने के लिए, तो होता ना लोगों को संधिवात हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, तो ये आर्थराइटिस, संधिवात इत्यादि, ये चुनौती किसके लिए, हमारी हड्डियों के लिए चुनौती। अब देखिए ये सारे इतने डॉक्टर जो हैं, ये स्पेशलिस्ट क्यों बने हैं, क्योंकि ये हमारे जो आभूषण हैं, इनकी जो चुनौतियां हैं, इनके बलबूते पर लोग स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। कोई आई स्पेशलिस्ट है, तो है क्या वो आई स्पेशलिस्ट कि आंखों के लिए जो चुनौती है उसके लिए उनका धंधा चल रहा है। कोई बोन स्पेशलिस्ट है, कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है। अब ये जो हार्ट है, देखिए ये इसका काम क्या है, ये जो खून है, रक्त है, उसका प्रवाह चालू रखना। तो इस हार्ट के लिए चुनौती क्या है, ब्लॉकेज, आर्टरी ब्लॉकेज, ये हार्ट के लिए चुनौती। तो ऐसे हम कितने, जितने सारे हमारे शरीर के अंग है, किडनी के लिए वो स्टोन आ जाता है वो चुनौती है, हार्ट के लिए ब्लॉकेज चुनौती है, पेट के लिए इंडाइजेशन चुनौती है, ब्रेन के लिए कोई अपना नर्व फट गया वो चुनौती है। तो हमारे स्वस्थ शरीर और शरीर के आभूषण के लिए, हर एक अंग के लिए कोई ना कोई चुनौती प्रकृति ने प्रस्तुत कर कर रखी है। तो केवल हमारे शरीर को हम देखें तो समझ में आ जाना चाहिए कि कितना भी स्वस्थ शरीर हो, चाहे हिरण्यकशिपु जैसा, जिसने अपने शरीर को सब रूप से, उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं थी, कोई उसे कभी किसी दिल का दौरा नहीं पड़ा, दमा नहीं, कुछ नहीं, पेट दर्द नहीं, कोई उसको किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, फिर भी उसके लिए सबसे बड़े चुनौती स्वयं साक्षात भगवान प्रकट हुए। तो जैसे हमारे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ शरीर के अंगों के लिए बीमारी के रूप में चुनौतियां हैं, वैसे ही हमारी स्वस्थ भक्ति के लिए हमारे अनर्थ चुनौतियां बनकर आते हैं। तो आज का जो श्लोक है, इस श्लोक में देखिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण पत्नियां दीर्घ काल से जिन्होंने श्रवण किया भगवान के विषय में, और अब भगवान का दर्शन इन्हें मिलने वाला है, और कैसे मिलने वाला है, भगवान ही बुला रहे हैं, भगवान ने ही आमंत्रण दिया कि आइए मुझे ये भोग अर्पित कीजिए और मेरा दर्शन ग्रहण कीजिए। सोचिए, भगवान ने आमंत्रित किया इनको दर्शन के लिए, तो इतनी सुलभ इनकी भक्ति हो चुकी थी। यहां पर एक क्या देख रहे हैं, इनके भक्ति का जो आभूषण, सुलभता, इतनी सुलभ भक्ति हो गई थी, इतनी सहज भक्ति हो गई थी और इतनी सरल भक्ति हो गई थी कि जो कुछ उन्होंने तैयार किया था अपने पतियों के लिए, उनके यज्ञ के लिए, बस वही, अलग से कुछ नहीं बनाना था, भगवान ने कहा वही अर्पित करो मुझे। तो इतनी सरल, इतनी सहज, इतनी सुलभ इनकी भक्ति इन ब्राह्मण पत्नियों की, आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, फिर भी दीर्घ काल तक जिन्होंने श्रवण किया, सब कुछ किया, भगवान ने आमंत्रण दे दिया, पहुंच गए भगवान, बाधा क्या आई, निषिद्यमान, इन्हें रोका गया। किसने रोका, भ्रातृ भी, बंधु भी, सुतई, पति भी, इनके पतियों ने, इनके भाइयों ने, इनके बंधुओं ने और इनके पुत्रों ने। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं निषिद्यमान, इन सब ने रोका ब्राह्मण पत्नियों को जाने से। तो यहां पर सिद्धांत क्या समझ में आ रहा है कि जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, दीर्घ काल तक हमने श्रवण भी किया होगा और भक्ति हमारे लिए इतनी सहज, सरल, सुलभ हो गई होगी, परंतु कहीं ना कहीं हमारे जो एकदम निकटतम, जो हमारे पति, हमारे भ्रातृ, हमारे पुत्र, हमारे बंधु, वही निषिद्यमान, वही बाधा डालेंगे। इवन दो भक्ति विल बिकम सो इजी, सो एक्सेसिबल, सो सिंपल एंड ऑल ऑफ दैट, स्टिल द मोस्ट नियर एंड डियर वंस विल क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन अवर मीटिंग कृष्णा। इन स्पाइट ऑफ अवर हियरिंग अबाउट कृष्णा फॉर दीर्घ काल, ये ज्वलंत उदाहरण सामने है ब्राह्मण पत्नियों का, निषिद्यमान, और वो भी कौन, देयर नियर एंड डियर वंस, आज के श्लोक में भ्रातृ भी, पति भी, बंधु भी, सुतई। और अगर हम उदाहरण लें प्रह्लाद महाराज का, अगर उदाहरण लें तो प्रह्लाद महाराज, उनके लिए यदि पूछा जाए कि प्रह्लाद महाराज के लिए सबसे बड़ा अवरोध कौन था, प्रह्लाद महाराज के ही स्वयं के पिता, पांडवों के लिए उनके ही भाई, ध्रुव महाराज के लिए चुनौती के रूप में ध्रुव महाराज की माता कौन, सौतेली मां सुरुचि आई। रामचंद्र जी के लिए रामायण में यदि देखें तो कई कई चुनौती के रूप में आए। अब यहां पर यह समझना है कि वो बाहरी दृष्टिकोण से ये सब चुनौतियां थी, लेकिन इन चुनौतियों के वजह से इन्हें भगवान का दर्शन हुआ। हिरण्यकशिपु के वजह से प्रह्लाद महाराज को नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ, सुरुचि के वजह से ध्रुव महाराज को भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, कैकेयी के वजह से रामचंद्र जी, जो उनका धर्म की स्थापना उनको करनी थी रावण को मारने का, वो किसके वजह से, कैकेयी के वजह से, अगर हम हमारे श्रील प्रभुपाद का उदाहरण लें, तो श्रील प्रभुपाद अच्छी खासी भक्ति कर रहे थे गृहस्थ आश्रम में, प्रचार भी कर रहे थे एज अ गृहस्थ। उनके जीवन में एक ही चुनौती आई, उनकी पत्नी। और आज हम लोग सब यहां पर श्री श्री राधा मदन गोपाल मंदिर में बैठकर श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, किसके वजह से? वो जो चुनौती श्रील प्रभुपाद के जीवन में, गृहस्थ जीवन में आई, उनकी पत्नी, जिन्होंने चाय चुना। प्रभुपाद ने क्या पूछा था? टी और मी, और उन्होंने चाय चुनी। तो जो उन्होंने चाय चुनी, उसके वजह से आज हम बिना चाय के यहां बैठे हैं। कि प्रभुपाद ने प्रण लिया कि इसे भागवत से ज्यादा चाय में रुचि है, तो मैं प्रण लेता हूं कि पूरे विश्व की चाय छुड़ाऊंगा मैं। तो देखिए, वो चुनौती, अब अगर हम इस स्टोरी को थोड़ा बदल लें कि उस दिन अगर श्रील प्रभुपाद की पत्नी कह देती कि नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, आज से मैं चाय छोड़ दूंगी, तो हमारे लिए तो बड़ी समस्या हो जाती। फिर प्रभुपाद, हो सकता है कि कुछ दूसरा रुख हो जाता उनका। खैर, ये सब भगवान की योजनाएं होती हैं, कि भगवान ही कराते हैं सब कुछ। भगवान चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद जैसे सेनापति पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति फैलाएं, तो भगवान चाहते हैं और भगवान ही चुनौतियां भेजते हैं। और कौन सी चुनौतियां भेजते हैं? ऐसी चुनौतियां भेजते हैं जो हमारे एकदम निकट के हों। दूर दराज देश से कोई चुनौतियां इतनी नहीं आती जितनी हमारे एकदम निकट के जो सगे संबंधी होते हैं। यहां तक कि भक्ति में भी, भक्ति के समुदाय में भी, जो हमारे सबसे निकट के हमारे गुरु बंधु, जिनकी दीक्षा हमारे साथ ही हुई, जिनके साथ हम उठ बैठ कर पले बड़े भक्ति में, उन्हीं के द्वारा चुनौतियां भगवान भेजेंगे वैष्णव रिलेशनशिप के रूप में। हमारे अहंकार को ठोकर मारने के लिए, हमको नम्र बनाने के लिए भगवान किसको भेजेंगे? भगवान ओसामा बिन लादिन को नहीं भेजेंगे। हमें नम्र बनाने के लिए भगवान को किसी आतंकवादी को भेजने की जरूरत नहीं है। हमारे अनर्थों को चूर चूर करने के लिए भगवान किसको भेजेंगे? जो हमसे सबसे निकट हैं, भगवान उसी को यूज करेंगे। जैसे कि आज के उदाहरण से हम देख रहे हैं, और इतने सारे उदाहरण। तो अब यहां पर यह समझ में आ रहा है कि हम व्यक्तिगत रूप से देखें तो जब हम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं या भक्ति प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले ये जो हमारा मन है, जो हमारे ही अंदर बैठा है, जैसे नरसिंह भगवान, नरसिंह पुराण में ये वर्णन है कि एक नरसिंह भगवान के भक्त, वो नरसिंह भगवान से प्रार्थना किए कि, हमने पिछली बार श्लोक लिया था ना, मम भयान भिंदी भिंदी हत हत रत छिंद छिंदी, कि आइए और मेरे दुश्मनों को छिंदी छिंदी कीजिए, मारिए मेरे दुश्मनों को, मारिए। तो जैसे इन भक्त ने नरसिंह भगवान से प्रार्थना की कि मेरे दुश्मनों को खदेड़िए, मेरे दुश्मनों को मारिए, तो नरसिंह भगवान के जितने अस्त्र शस्त्र उनके आठ भुजाओं से आए मारने के लिए, क्योंकि अब भक्त ने प्रार्थना की कि मेरे दुश्मनों को मारिए, तो सारे सुदर्शन और इत्यादि सब कुछ बाहर आ गए, नरसिंह भगवान के हाथों से बाहर आ गए मारने के लिए। तो भक्त एकदम प्रसन्न हुए कि अरे, तो एकदम इंस्टेंट प्रेयर्स फुलफिल हो रहा मेरा, कि मेरे दुश्मनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र बाहर आ गए। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वो सारे आयुध भगवान के इसके हृदय की ओर आ रहे हैं। डायरेक्शन कहाँ है उसका? इसके हृदय की ओर डायरेक्शन है। जैसे कई बार हम भक्तों के समुदाय में रहते हैं, हम अगर नरसिंह भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे दुश्मनों का विध्वंस कीजिए। और कई बार हम हमारे पास लिस्ट भी रहता है कि लिस्ट लेके जाते हैं कि इनकेस अगर भगवान के आयुध तुरंत बाहर आ जाएं तो उनको लिस्ट दिखा दूं कि ये इस कोने में खड़ा है, वो उस कोने में खड़ा है। परंतु हमारे दुर्भाग्यवश होगा क्या कि वो भगवान के आयुध जब आएंगे तो वो हमारे ही हृदय की ओर उनका इशारा होगा। तो ये भक्त सकपका गए कि अरे ये मेरे हृदय की ओर क्यों आ रहे ये सारे अस्त्र शस्त्र। तो भगवान ने कहा तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन वहीं पे बैठे हैं, तुम्हारे ही अंदर बैठे हैं। तो यहां पर हमने भक्ति के 8 आभूषण संक्षिप्त रूप में इनकी चर्चा की। अब हम माया देवी के 8 आभूषण जो कि एक एक कर कर इनकी चुनौती बनते हैं। तो सबसे पहला आभूषण जिसकी चर्चा हमने पिछली बार की कि भक्ति है सर्वव्यापक, सर्वव्यापकता, ये भक्ति का पहला आभूषण है। सर्वव्यापकता का अर्थ हमने समझा भक्ति इज वर्सटाइल, अलग अलग प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं। तो ये भक्ति की जो सर्वव्यापकता है इसके लिए माया देवी चुनौती क्या सामने रखती है? लैक ऑफ गाइडेंस। भक्ति हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमने चर्चा की नवधा भक्ति है, वर्णाश्रम में स्थित रहकर हम भक्ति मार्ग का पालन करते हुए अपने आप का उद्देश्य सिद्ध कर सकते हैं। परंतु कलयुग में एक बहुत ही बड़ी बीमारी क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। और यहां पर हम देखते हैं कि कई बार जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं उनके अंदर भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता। बाहर तो छोड़ दीजिए, प्रामाणिक जो संप्रदाय हैं, यहां तक कि हमारी संस्था में भी ऐसे ऐसे मैंने केंद्र देखे हैं, भक्तों से मैं मिला हूं कि जो भक्ति छोड़े और एक कारण भक्ति छोड़ने का उनका क्या था, उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। There was no proper guidance। तो हम एक एक उदाहरण लेंगे अब कि कैसे भक्ति की इस एक चुनौती के वजह से एक भक्त के जीवन में क्या तकलीफ आई। तो भरत महाराज का उदाहरण है। अब देखिए भरत महाराज जो कि भाव स्तर पर पहुंच चुके थे और एकमेव कारण वो हिरण से आकृष्ट हुए या हिरण में आकृष्ट रहे, ये हम कह सकते हैं। एकमेव कारण उनका हिरण में आकृष्ट रहने का क्या था? लैक ऑफ गाइडेंस। वहां पर कोई उनको गाइड करने वाला नहीं था भरत महाराज को, जैसे हमने इसकी चर्चा की थी पिछली बार भी। राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में कहे इफ भरत महाराज हैड सम गॉड ब्रदर along with him in that forest, अगर एक भी गुरु बंधु को साथ में ले गए होते तो गुरु बंधु तुरंत बोल देता भरत प्रभु you are going in maya, you are getting attracted to a deer। महाराज ने यही words use किए, भरत प्रभु wake up, भरत प्रभु chant your rounds, भरत प्रभु leave that deer alone, you are not supposed to become counselor to that deer। तो भरत महाराज के लिए जो सर्वव्यापक भक्ति की चुनौती कौन सी सामने आई? लैक ऑफ गाइडेंस, कि भाव स्तर से वो प्राणी की योनि में चले गए, हिरण बन गए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। अगला आभूषण सहजता। इसमें उदाहरण है काल कृष्णदास। काल कृष्णदास इनके लिए भक्ति कितनी सहज थी कि नित्यानंद प्रभु ने इनको चैतन्य महाप्रभु का पर्सनल सर्वेंट बना दिया। अब देखिए, हम सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट, या कोई बड़े बड़े आचार्य उनके पर्सनल सर्वेंट, तो उनको हम कैसे देखते हैं? तो यहां पर इमेजिन कीजिए, चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट, और वो भी दक्षिण भारत की यात्रा में केवल ये दोनों ही थे। ऐसा नहीं कि दक्षिण भारत की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु कुछ हजारों लोगों के साथ गए और उसमें से काल कृष्णदास एक सर्वेंट थे, नहीं, और कोई नहीं साथ में, ओनली चैतन्य महाप्रभु एंड ओनली काल कृष्णदास। तो काल कृष्णदास के लिए, काल कृष्णदास ने किया क्या था? काल कृष्णदास केवल नित्यानंद प्रभु के गुड बुक्स में थे, बस। तो यहां पर यह समझ में आता है, अगर कोई नित्यानंद प्रभु के गुड बुक्स में आ जाए तो चैतन्य महाप्रभु का पर्सनल सर्वेंट भी बन सकता है। लेकिन सावधान, इससे ही काफी नहीं हो जाएगा, क्योंकि काल कृष्णदास ने जो सहज उनको अवसर मिला, साक्षात भगवान की भक्ति करने का जो सहज अवसर उनको मिला, उनके लिए चुनौती क्या थी? सहजता, भक्ति की जो सहजता, ये जो आभूषण है इसके लिए चुनौती है, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। टेकिंग भक्ति फॉर ग्रांटेड, क्योंकि भक्ति तो इतना सहज है, जो भी चीज सहजता से मिल जाए, कलयुग में माया देवी उस सहजता के साथ कौन सी चुनौती हमारे सामने प्रस्तुत कर रखती है? टेक इट फॉर ग्रांटेड, विच मीन्स डोंट टेक इट सीरियसली। जैसे हम देखते हैं कि अक्सर जो हमारा मन है वो माया देवी के इस आभूषण से सुसज्जित रहता है। कौन से आभूषण से? टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, कि साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यहां पर प्रकट हुए हैं श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के रूप में, और कई बार हम सहजता से ले लेते हैं, अरे ये तो खड़े रहते हैं तो उसमें क्या है, 2 साल से खड़े हैं, आगे 20 साल और भी खड़े रहेंगे तो खड़े रहेंगे, तो हम उनको सहजता से ले लेते हैं, उनके दर्शन को सहजता से ले लेते हैं, उनके कीर्तन को, उनके श्रवण को, उनके भक्तों को सहजता से ले लेते हैं, उनका जो हरिनाम है कि ये हरिनाम, मेरी माला तो मेरे पास ही रहेगी, हरिनाम तो हरिनाम, तो पूरे अभी तो कलयुग के केवल 5000 वर्ष गए हैं, जय श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, देखिए कितनी सहजता से दर्शन मिल रहे हैं, हमको उठकर कुछ करने की भी जरूरत नहीं, बैठे हैं, जहां पर बैठे हैं भगवान तैयार होते हैं, तैयार होकर अपने आप का दर्शन देते हैं, और भगवान अपने पुजारी को कहते हैं कि इनको दर्शन देने के लिए तुम नहा धो के आओ, दरवाजा खोलो। तो देखिए, ये जो चुनौती है भक्ति की, जो सहजता है उसके लिए जो चुनौती है, जो काल कृष्णदास के उदाहरण से समझ में आ रहा है, क्या गलती थी काल कृष्णदास की? काल कृष्णदास की ये गलती नहीं थी कि वो जो भट्टाहारी थे उनसे काल कृष्णदास आकृष्ट हुआ, वो सेकेंडरी। भट्टाहारी से काल कृष्णदास का आकृष्ट होना ये एक रिजल्ट था चैतन्य महाप्रभु को चीपली लेने का। ही गेटिंग अट्रैक्टेड टू भट्टाहारीज, दोज जिप्सीज, वॉज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ टेकिंग चैतन्य महाप्रभु फॉर ग्रांटेड, टेकिंग चैतन्य महाप्रभु एसोसिएशन फॉर ग्रांटेड, टेकिंग भक्ति वेरी चीपली। तो जैसे ही हमारे जीवन में यदि हम इस भौतिक संसार से आकृष्ट होना प्रारंभ करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमने भक्ति की जो सहजता है उसको बहुत चीपली लिया है। इसलिए इसका एक संप्रदाय खड़ा हो गया था भक्ति विनोद ठाकुर के समय। कौन सा संप्रदाय? सहजिया। सहजिया किसको कहते हैं? कि जो भक्ति की जो सहजता है उसको चीपली लेते हैं, उसको कहते हैं सहजिया। भक्ति सहज है परंतु भक्ति चीप नहीं है। ये दोनों में हमको मार नहीं खाना चाहिए। समथिंग विच इज वेरी इजी डजंट मीन दैट इट शुड बी टेकन चीपली। जैसे कि हमने पिछली बार उदाहरण लिया था कि हम सांस लेते हैं, हर क्षण ये सांस चल रही है हमारी, कितना सहज है। हम कभी बार प्रयास भी नहीं करते सांस लेने का, पता भी नहीं लगता है कि रात में सोए हुए हैं, पूर्ण गार्ड निद्रा में सोए हुए हैं, फिर भी अपने आप सांस चल रही है हमारी, इतना सहज है सांस लेना। और इसी सांस लेने को अगर हम चीपली लेंगे, तो जब किसी को दमे की बीमारी होती है या कोई किसी का गला दबा देता है, तब समझ में आता है कि ये जो क्रिया इतनी सहज हमारे लिए है रोज की, इसका वैल्यू क्या है। तब क्या समझ में आता है? ये सांस लेने का वैल्यू समझ में आता है। जैसे वो हम ये कथा सुनाते हैं, एक शिष्य अपने गुरुजी के पास गए दीक्षा मांगने के लिए, तो गुरुजी लेकर गए नदी के तट पर, और नदी के अंदर उनके सर को डुबा दिया। भाई ये तो दीक्षा मांगने गए थे, ये क्या दे रहे हैं अभी, डुबा दिया पूरा सर नदी के अंदर, उसके केश पकड़कर नीचे डुबा दिया। और कुछ एक मिनट तक, डेढ़ मिनट तक ऐसे ही रखा, और जब उसकी सांस ऐसे फूलने लगी, हाथ पैर पटकने लगा वो अंदर, फिर गुरुजी ने बाहर निकला। और फिर गुरुजी ने पूछा कि जब तुम उस डेढ़ मिनट तक अंदर थे तो तुम्हारे मन में कौन सी इच्छा सबसे तीव्र थी? तो उसने कहा एक ही इच्छा, सांस लेने की। तो गुरुजी ने कहा जब तुम्हारे मन में मुझसे दीक्षा लेने की इच्छा उतनी तीव्र होगी तब आना। अब देखो इस्कॉन में कितना सहज कर दिया है दीक्षा लेना। हम लोग भक्ति की सहजता की चर्चा कर रहे हैं कि कल्पना करो कि अगर ये दीक्षा का टेस्ट रखा जाए, जितने दीक्षा के कैंडिडेट्स हैं उनको गोदावरी में लेकर। तो उदाहरण हम सांस लेने का, जो कि इतनी सहज है, तो जब ये सांस लेना मुश्किल हो जाता है तब इसका वैल्यू समझ में आता है कि कितना वैल्यूएबल है ये सांस लेना। ये ऑक्सीजन कितना वैल्यूएबल है जो कि इतनी सहज तरीके से अवेलेबल है सब जगह। आप कहीं पर भी जाओ, कभी आपने चिंता करी है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, पता उधर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्या हम ट्रेन में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, पंजाब जा रहा हूं, साउथ इंडिया जा रहा हूं, पता नहीं वहां ऑक्सीजन अगर नहीं हुआ, नासिक में तो है भरपूर मात्रा में, अगर वहां पे ऑक्सीजन नहीं हुआ, कितनी सहजता से हम उसके बारे में चिंता भी नहीं करते। तो उसी प्रकार से काल कृष्ण दास को जो चैतन्य महाप्रभु का संग इतनी सहजता से मिल गया, लेकिन उसने वैल्यू नहीं किया। तो ये चुनौती आती है भक्ति के इस आभूषण के विरुद्ध, सहजता के विरुद्ध चुनौती है टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। सरलता अगला आभूषण भक्ति का। अब देखिए, सरलता का विपरीत क्या है? कुटिलता या कॉम्प्लेक्सिटी। तो प्रकाशानंद सरस्वती का उदाहरण है कि प्रकाशानंद सरस्वती ने जब चैतन्य महाप्रभु को देखा, सन्यासी के रूप में ये केवल नृत्य करते हुए कीर्तन कर रहा है, तो प्रकाशानंद सरस्वती को समझ में नहीं आया कि एक सन्यासी, वो भी उनके शंकर संप्रदाय में जिसने दीक्षा ली है सन्यास की, वो अपने मोक्ष के लिए केवल पागलों की तरह नृत्य करता हुआ ये कीर्तन कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकाशानंद सरस्वती एक मायावादी सन्यासी था, और जो मायावादी सन्यासी होते हैं उनके लिए जब तक कि आप कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं करो तब तक कुछ लगता नहीं कि तुम मोक्ष के लिए अग्रसर हो रहे हो। और प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु का की जब भेंट हुई पहली बार, तो चैतन्य महाप्रभु ने कितनी सरलता से प्रकाशानंद सरस्वती का हृदय जीता कि चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले जाकर ऐसे स्थान पर बैठ गए जहां पर ये सारे मायावादी सन्यासी अपने पैर चरण धोते थे, फुटवॉश एरिया। फुटवॉश एरिया में जाकर चैतन्य महाप्रभु बैठ गए, और चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर बैठे बैठे अपना तेज प्रकाशमान किया, शरीर का तेज, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि ये जो मायावादी है ये ब्रह्म ज्योति से बहुत आकृष्ट रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ब्रह्म ज्योति वहां पर प्रदर्शित की, परंतु प्रकाशानंद सरस्वती का जो इतना कॉम्प्लेक्स हृदय था कि जो अलग-अलग तरीके से वेद को मिसइंटरप्रिट कर कर प्रस्तुत करना, मायावादी करते क्या है, वेदों को तोड़ मरोड़ कर, उनके जो सिद्धांत है तोड़ मरोड़ कर उनको प्रस्तुत करते हैं मायावादी, यही प्रकाशानंद सरस्वती किया करते थे। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो कि इतने इतना कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल जीवन जी रहे थे, उनका हृदय परिवर्तित कब हुआ? जब वो गए चैतन्य महाप्रभु को वहां से उठाने के लिए, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा कि आप यहां पर क्यों बैठे हैं, आप हमारे साथ आकर बैठिए, आप एक सन्यासी हैं। तो जानबूझकर चैतन्य महाप्रभु ऐसी जगह पर बैठे कि प्रकाशानंद सरस्वती की कुछ भक्ति प्रारंभ हो, और वही पॉइंट था, प्रकाशानंद सरस्वती डिवोशनल सर्विस बिगैन व्हेन ही ऑफर्ड हिज हैंड टू हेल्प चैतन्य महाप्रभु टू कम अप एंड सिट विद देम। देखिए कितनी सरल भक्ति है कि उसने केवल अपना हाथ बढ़ाया और वहां से चैतन्य महाप्रभु ने कृपा देना शुरू कर दिया। तो प्रकाशानंद सरस्वती का उदाहरण है कि चैतन्य महाप्रभु की सरलता की वजह से प्रकाशानंद सरस्वती जैसा कॉम्प्लेक्स मायावादी सन्यासी, जिसके 60,000 शिष्य थे, वो भी सब सन्यासी थे, उन सब का परिवर्तन चैतन्य महाप्रभु ने अपनी नम्रता और सरलता से किया। चौथा आभूषण हमने सुना भक्ति का, सुलभता, कि भक्ति इतनी सुलभ। और इसमें फिर से हम उदाहरण लेंगे श्रील प्रभुपाद की पत्नी का। देखिए श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हुए, जब श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन प्रस्थापित किया, तो उनके शिष्य ऐसे ऐसे शिष्य कि प्रभुपाद की एक झलक मिल जाती, कई तो ऐसे शिष्य प्रभुपाद को देखे भी नहीं। प्रभुपाद से दीक्षित कैसे हुए? वो थ्रू मेल, मेल से दीक्षा हुई उनकी, उन्होंने कभी प्रभुपाद को देखा तक नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह पर वो मिशन की सेवा कर रहे थे कि प्रभुपाद तक वो पहुंच भी नहीं पाए। और आज दिन तक वो उतने ही विश्वासु सेवक शिष्य हैं प्रभुपाद के। तो हम यदि कल्पना करें कि प्रभुपाद के लिए या प्रभुपाद के जो एकदम निकट के उनके पारिवारिक सदस्य, प्रभुपाद के बेटे, देखिए दुर्भाग्य ये, प्रभुपाद ने जमुना माता जी को कहा, हाल ही में जमुना माता जी पिछले साल जो उनका देहांत हुआ था, तो अभी जो एकादशी गई, सफल एकादशी, तो सफल एकादशी में जमुना माता जी की समाधि वृंदावन में मनाई गई। तो मैं राधानाथ महाराज का प्रवचन सुन रहा था, वो समाधि सेरेमनी का, बहुत सुंदर राधानाथ महाराज जमुना माता जी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। जो लोग नहीं जानते जमुना माता जी के विषय में, हर रोज दर्शन आरती के समय जो गोविंदम आदि पुरुषम जिन्होंने गाया है, पूरे इस्कॉन में हर रोज दर्शन आरती के समय जमुना माता जी का गाया हुआ गोविंदम आदि पुरुषम बजाया जाता है। प्रभुपाद ने आदेश दिया था, जब वो पहली दफा राधा गोपीनाथ मंदिर में आई, देखिए भगवान की लीलाएं कैसे होती हैं। फर्स्ट टाइम जब जमुना माता जी राधा गोपीनाथ मंदिर में आई, मॉर्निंग प्रोग्राम उन्होंने अटेंड किया, और हमारा मंदिर साउथ बॉम्बे में स्थित है, बॉम्बे का पॉशेस्ट एरिया जिसको बोलते हैं, राधा गोपीनाथ मंदिर वहां पर सिचुएटेड है, और बंबई में, पूरे बंबई में आपने कभी सुना नहीं होगा कि लोड शेडिंग हो रहा है, लाइट चली गई, साउथ बॉम्बे में तो छोड़ दीजिए। मैंने कभी, मैं इतने साल वहां पर रहा, मैंने कभी देखा नहीं कि लाइट गई वहां पर, कभी कि जनरेटर चालू करना पड़ा, इन्वर्टर है ही नहीं कहीं पर, किसी के घर में कोई इन्वर्टर नहीं, जनरेटर नहीं, क्योंकि बंबई शहर में लाइट नहीं जाती कभी, साउथ बॉम्बे में तो बिल्कुल नहीं। जमुना माता जी आई और दर्शन का टाइम आया, शंख बज गया, जैसे ही ऑल्टर खुला लाइट गई। तब गोविंदम आदि पुरुषम का रिकॉर्ड कैसे चलाएंगे? तो जैसे ही अब लाइट चली गई तो सभी यहां पर गए, तो ये तो लाइव परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, अभी जिन्होंने ओरिजिनल गाया है ये यहां पर हैं, तो सभी इनकी ओर देखने लगे, और जमुना माता जी वो वहां पर लाइव गोविंदम आदि पुरुषम जो हम लोग रिकॉर्ड बजाते हैं दर्शनार्थी के समय, वो लाइव गाने लगी। और जैसे ही वो जो कुछ 5-7 मिनट का दर्शन आरती होता है, जैसे ही वो पूरा 5-7 मिनट का उन्होंने गाया, वो गाते ही पुजारी शंख बजाया, आरती पूरी हुई, लाइट आई। तो महाराज अपने श्रद्धांजलि में बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद की कृपा जमुना माता जी के ऊपर कितनी थी। हम वो प्रसिद्ध स्टोरी जानते हैं कि उनकी बहन जानकी, जिनका विवाह मुकुंद महाराज, जो आगे संन्यास लिए, तो मुकुंद प्रभु उनसे जब हुआ उनका विवाह, तो प्रभुपाद ने जानकी माता जी को कहा कि आपके परिवार में कोई है जो शादी में, उनको आना चाहिए आपकी शादी में। तो केवल जमुना माता जी एक बहन थी, वो आई थी, और उस समय वो एक टीनेजर थी। जब जानकी माता जी का विवाह हो रहा था तो जमुना माता जी एक टीनेजर थी, और प्रभुपाद ने उनको कहा, यू आर सिस्टर ऑफ जानकी? ने कहा, यस, सो यू शुड हेल्प मी इन कुकिंग फॉर योर सिस्टर्स वेडिंग फीस्ट, कम इन द किचन। तो वो अब जो भी वो वेस्टर्न वेशभूषा में स्कर्ट वर्ट पहनी हुई उस किचन में प्रभुपाद के साथ आई, और प्रभुपाद ने उनको पूछा, आटा लगाना आता है? अभी इनको पता ही नहीं आटा क्या होता है, लगाना तो छोड़ दीजिए। तो प्रभुपाद कहे, तुम 16 साल की, तुमको आटा लगाना नहीं आता? प्रभुपाद बोलने लगे कि जो इंडिया में कोई 12 साल की लड़की भी होती है वो पूरा फीस्ट बना सकती है। पता नहीं आजकल क्या हाल है। तो प्रभुपाद बोल रहे थे जमुना माता जी, प्रभुपाद ने सिखाया कि हाउ टू मेक अ मीडियम सॉफ्ट डो। तो ये जमुना माता जी महाराज बता रहे थे कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, प्रभुपाद का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जमुना माता जी को क्या मिला, कुकिंग, कुकिंग इंस्ट्रक्शंस मिला। एंड हाउ जमुना माता जी टुक कुकिंग इंस्ट्रक्शन सो सीरियसली दैट शी लेटर ऑन पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड कृष्णास क्यूजीन विच बिकेम द नंबर वन वेजिटेरियन कुक बुक ऑफ द वर्ल्ड, इट गॉट द अवार्ड। जो प्रभुपाद से मिलने से पहले जिसको कुकिंग का एबीसीडी नहीं पता था, उन्होंने ऐसी पुस्तक लिखी। और महाराज बोल रहे थे कि वो कुछ साल पहले जब गीता नगरी नहीं शरणागति, कनाडा में जो उनकी फार्म शरणागति गए थे जमुना माता जी के फार्म पर, तो जमुना माता जी ने महाराज राधानाथ महाराज के लिए 6 प्रकार के फ्लेवर्ड चपाती बनाई थी। और महाराज बता रहे थे आई डिडंट इवन नो दैट देयर आर फ्लेवर्ड चपातीज आल्सो एंड दैट टू 6 इन वैरायटी। तो महाराज बोले यू कैन इमेजिन व्हाट वुड हैव बीन द अदर फीस्ट इफ द चपातीज वर ओनली 6 काइंड्स ऑफ चपातीज, पराठा नहीं, 6 काइंड्स ऑफ फ्लेवर्ड चपातीज। तो ये जमुना माता जी का एक्सपर्टीज केवल प्रभुपाद के संपर्क में आने के पश्चात कुकिंग में, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद गेव टू हर वाज अबाउट कुकिंग, शी टुक दैट टू हर हार्ट एंड सोल। सेकेंड इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद गेव टू हर वाज हाउ टू चैंट। प्रभुपाद ने उनको चैंटिंग कैसे करना ये सिखाया। और हम देखते हैं गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम का जो रिकॉर्डिंग हुआ वो रिकॉर्डिंग जॉर्ज हैरिसन के स्टूडियो में हुआ, जिस जॉर्ज हैरिसन का कोई ऑटोग्राफ भी नहीं ले पाता था सुलभता से, वो जॉर्ज हैरिसन ने जमुना माता जी और इन सब को उस समय श्याम सुंदर प्रभु इत्यादि जो लंदन गए थे उनको अपने स्टूडियो में बुलाकर खुद जॉर्ज हैरिसन साइड में बजा रहे हैं। कौन, जॉर्ज हैरिसन जैसे बड़े बीटल्स के गायक वो जमुना माता जी के लिए गिटार बजा रहे हैं कि वो लीड सिंगर कौन है, जमुना माता जी है, और जॉर्ज हैरिसन साइड में गिटार बजा रहे हैं। और जॉर्ज हैरिसन ने कहा दैट यू हैव सच हेवनली वॉइस दैट इफ यू वांट आई कैन मेक यू वर्ल्ड फेमस। लेकिन जमुना माता जी ने कहा नो, आई जस्ट वॉन्ट टू सिंग फॉर द प्लेजर ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये उनके अंदर प्रभुपाद के कांटेक्ट में आने के बाद ऐसे ऐसे स्किल्स। फिर महाराज बता रहे थे डीटी वर्शिप, प्रभुपाद ने पर्सनली जमुना माता जी को अपने पर्सनल डीटीज दिए राधा बन बिहारी। और डीटी वर्शिप के विषय में मैं आपको बताऊं कि अपने राधा मदन गोपाल जी जब बन रहे थे जयपुर में और मैं वहां पर जब था तो वहां पर रामेश्वर लाल पांडे जिन्होंने राधा श्याम सुंदर बनाए अपने हाथों से, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव जिन्होंने अपने हाथों से बनाए, उनका नाम रामेश्वर लाल पांडे, बहुत अभी तो वृद्ध हो गए वो। तो वो मैं उनके साथ चर्चा कर रहा था तो मैं पूछ रहा था कि राधा श्याम सुंदर जो कि इस्कॉन के नंबर वन ब्यूटीफुल डीटीज में से आते हैं स्पेशली राधा रानी, तो वो रामेश्वर लाल पांडे कह रहे थे कि भाई हम तो अपने तरीके के कारीगर थे और हम अपने तरीके से राधा कृष्ण की मूर्तियां बनाते थे, परंतु आपके इस्कॉन की एक महिला उन्होंने मुझे सारे डिटेल्स दिए कि राधा रानी कैसी होनी चाहिए। मैंने कहा कौन थे वो, उन्होंने कहा जमुना, जमुना माता। और रामेश्वर लाल पांडे कैसे बुलाए, तो बोले जमुना माता। वो जो जमुना माता थी उनके अंदर पता नहीं ये क्या गुण था, कि वो जो राधा रानी हमने बनाई वो हमने नहीं बनाई, वो उन्होंने हमसे बनवाई। और सोचिए ये हम उस समय की बात कर रहे हैं, 1970s की बात कर रहे हैं, कि 1970s में एक अमेरिकन महिला जयपुर में जाकर, ये रामेश्वर लाल पांडे, मैं जब 2 साल पहले गया तो भी वो इतने ट्रेडिशनल केवल धोती कुर्ता में ही रहते, सोचो 70s में वो कितने और ट्रेडिशनल रहे होंगे। तो उनको एक अमेरिकन महिला स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं कि राधा रानी की ड्यूटीज कैसे होनी चाहिए, श्याम सुंदर की ड्यूटीज कैसे होनी चाहिए। तो क्या इनको बैकग्राउंड था कि ड्यूटीज कैसे होने चाहिए, कौन सा बचपन में इन्होंने ड्यूटी वर्शिप किया, कृष्ण के बारे में सुना, कोई नाम लिया? नहीं, कुछ नहीं। एम्पावर्ड बाय श्रील प्रभुपाद। तो महाराज बता रहे थे कि इफ यू टेक हर एक्सपर्टीज इन ड्यूटीज, द मोस्ट ब्यूटिफुल ड्यूटी ऑफ राधा रानी वॉज रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ जमुना माता जी, प्रीचिंग। लंदन में जो ये 3 कपल्स गए उसमें से जमुना माता जी, सो प्रीचिंग में। तो प्रभुपाद, महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद इतना जमुना माता जी से प्रसन्न थे कि प्रभुपाद ने ये स्टेटमेंट किसी के विषय में नहीं कहा था। प्रभुपाद ने स्टेटमेंट कहा जमुना माता जी के विषय में, जमुना हैज अटेंड भाव फॉर कृष्णा। और महाराज बता रहे थे कि जब उनके देहांत के कुछ महीने पहले जमुना माता जी भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में थी, बहुत बीमार अवस्था में, तो महाराज ने उनको भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में आने के लिए कहा ट्रीटमेंट के लिए। तो भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में जमुना माता जी राधानाथ महाराज को फोन करके कहती हैं कि मैं यहां पर नहीं रह सकती। तो महाराज ने पूछा क्यों? तो माता जी ने कहा क्योंकि यहां पर इतने लोग मेरी सेवा करने के लिए लगे हुए हैं, मैं इसकी आदि नहीं हूं। आई एम नॉट यूज टू टेकिंग सो मच सर्विस, आई कैन नॉट टेक सो मच सर्विस, सो आई एम लीविंग, दिस इज टू मच फॉर मी टू हैंडल, आई कैन नॉट बी सर्व्ड विद सो मच ऑफ ऑय एंड रेवरेंस। तो राधानाथ महाराज ने एक वाक्य उनको कहा, उन्होंने कहा सी ऑल दीज डिवोटीज of Bhaktivedanta Hospital and Mira Road who are serving you, for them, they haven't met Prabhupada, they haven't seen Prabhupada, but they see Prabhupada and they are trying to serve Prabhupada in you. So don't you want that Prabhupada should be served by them? अब देखो महाराज कुछ बोले हैं तो ऐसे convince करते हैं महाराज। तो जमुना माता जी कहें कि व्हाट कैन आई से। तो जमुना माता जी भक्तिविदांत हॉस्पिटल में जब वो थी, तो जो उनके प्रभुपाद ने जो उनको ड्यूटीज दिए थे राधा बन बिहारी के, वो कहां थे? कनाडा में, जो शरणागति फार्म है इस्कॉन का, वहां पर। तो राधा बन बिहारी का अपीयरेंस डे था और जमुना माता जी नहीं थी, तो वो कहीं डिवोटीज को कहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट एबल टू फिजिकली सेलिब्रेट द अपीयरेंस ऑफ राधा बन बिहारी माय ड्यूटीज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब डिवोटीज को कहा कि वॉट एवर रेसिपीज यू नो ऑफ सम वेरी एग्जॉटिक प्रिपरेशंस यू राइट इट डाउन। तो सभी डिवोटीज ने, कोई गुजराती डिवोटी, कोई महाराष्ट्रन डिवोटी, कोई पंजाबी डिवोटी, सभी ने अलग अलग उनके जो मन पसंदीदा एग्जॉटिक रेसिपीज लिख कर दिए जमुना माता जी को। फिर जमुना माता जी ने उनको जितनी रेसिपीज आती थी वो सारी रेसिपीज उन्होंने टाइप की अपने कंप्यूटर पे, और ऐसे 100 से भी ज्यादा रेसिपीज उन्होंने एक मेल में टाइप किया, और फिर उन्होंने राधा बन बिहारी का ईमेल एक अकाउंट खोला। किसका? भगवान का ईमेल अकाउंट खोला। देखो क्या क्रिएटिविटी इनकी, कि भगवान का ईमेल अकाउंट खोला और ये सारे रेसिपीज यहां से उन्होंने इंटरनेट के द्वारा भगवान को ऑफर किए, उनके डिटीज को ऑफर किए इंटरनेट के द्वारा, ईमेल के द्वारा ये सारे अलग अलग भोग उनके डिटीज राधा बन बिहारी को ऑफर किए। तो महाराज ये बोल रहे थे, अभी जस्ट वृंदावन में जब महाराज थे, महाराज बोल रहे थे कि नोबडी कुड हैव एवर इमेजिन्ड दैट इफ यू आर फिजिकली अवे फ्रॉम योर ड्यूटीज यू कैन स्टिल सेलिब्रेट देयर अपीयरेंस डे इन सच अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव मैनर। फिर महाराज ने कहा दिस इज हाउ जमुना माता जी प्रूव्ड इवन आफ्टर द डिसअपीयरेंस ऑफ श्रील प्रभुपाद सो मेनी इयर्स शी प्रूव्ड व्हाट प्रभुपाद सेड अबाउट हर दैट जमुना हैव अटेंड भाव फॉर कृष्णा। और महाराज ने कहा जमुना माता जी शी वॉज मैरिड टू गुरुदास प्रभु एंड वेन गुरुदास प्रभु टुक संन्यास श्रील प्रभुपाद गेव इंस्ट्रक्शंस टू जमुना माता जी दैट यू शुड ऑल्सो नाउ लिव लाइफ ऑफ अ रेनसेंट। और महाराज बोल रहे थे दिस इंस्ट्रक्शन ऑल्सो ऑफ श्रील प्रभुपाद शी फॉलोड टू द लास्ट लेटर दैट ऑल थ्रू हर लाइफ शी लिव्ड लाइक अ सन्यासी ऑल थ्रू हर लाइफ व्हाटएवर इंस्ट्रक्शंस प्रभुपाद के। तो यहां पर यह समझ में आ रहा है कि ये जो प्रभुपाद के ऐसे ऐसे शिष्य हुए जैसे जमुना माता जी, तमाल कृष्ण महाराज इत्यादि, राधानाथ महाराज, तो ये सारे जो प्रभुपाद के शिष्य जो प्रभुपाद को इतने समय बाद मिले, और हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं सुलभता कि प्रभुपाद के सगे संबंधी प्रभुपाद की पत्नी जो कि इतना कुछ प्रभुपाद से ले सकती थी, कितना सुलभ था प्रभुपाद की वाइफ के लिए भगवत धाम जाना। ऑफ कोर्स उनका तो उद्धार अवश्य निश्चित ही है, परंतु हम बाहरी दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने क्या प्रभुपाद के संघ का सदुपयोग किया। दुर्भाग्य तो इतना कि प्रभुपाद के एक बेटे प्रभुपाद के गुजरने के बाद उन्होंने इस्कॉन के ऊपर केस किया, और ये केस किया कि इस्कॉन जो है मेरे पिताजी ने चालू किया तो पूरे इस्कॉन की प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए उनके बाद। सोचो, तो सुलभता अवेलेबल थी इनके लिए। जैसे हम शायद तुकाराम महाराज की जो वाइफ, उनका भी ऐसा ही उदाहरण है कि तुकाराम महाराज के लिए गरुड़ जी आ गए और तुकाराम महाराज बुला रहे हैं उनकी वाइफ को कि तुम भी चलो वैकुंठ मेरे साथ। क्या क्वालिफिकेशन था उनका? उनका एक ही क्वालिफिकेशन था कि वो तुकाराम महाराज की वाइफ थी। उन्होंने कोई अभंग नहीं लिखे थे, वो तो पांड्या पांड्या बुलाती थी इनको, भगवान को पांडु। तो तुकाराम महाराज जब गरुड़ पर अब जा रहे हैं वैकुंठ, वो अपनी पत्नी को बुला रहे हैं कि तुम भी चलो मेरे साथ वैकुंठ, तो तुकाराम महाराज ने बोल दिया तो अवश्य ही उनकी टिकट बुक थी गरुड़ एयरलाइंस में, उनकी टिकट उसमें बुक थी वैकुंठ जाने के लिए। परंतु तुकाराम महाराज की वाइफ, जिनके लिए इतना सुलभ बना दिया तुकाराम महाराज ने भगवत धाम जाना, तुकाराम महाराज की वाइफ बोलती है ये मसीह को कौन देखेगा। मसीह बोलते ना भैंस को, माजी माहिर सी मसीह। मेरे मायके की भैंस जो कि दूध भी नहीं देती थी। तो तुकाराम महाराज की मूवी में बताया था कि वो उसके जो बच्चे वो भी खिल्ली उड़ाते थे अपनी माता का, वो बोलते अरे ये दूध भी नहीं देती, खाली तुम्हारे मायके की इसलिए रोज इसकी सेवा करती, तो वो बोलती अरे दूध नहीं देती तो क्या, शेंट तो देती है। तो तुकाराम महाराज की वाइफ के लिए कितना सुलभ था वैकुंठ जाना, प्रभुपाद की पत्नी के लिए कितना सुलभ था। तो इनकी सुलभता के लिए चुनौती क्या आई, आलस्य, कि भक्ति का ये जो आभूषण है, कौन सा आभूषण, सुलभता का आभूषण, तो इसके ठीक विरोध में माया देवी ने कौन सा आभूषण हमारे ऊपर डाल रखा है, आलस्य, लेजीनेस। फिर सर्वज्ञता, सर्वज्ञता के लिए उदाहरण है सार्वभौम भट्टाचार्य, कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि प्रकाशानंद सरस्वती जैसे ही ब्रह्मवादी मायावादी, और वो चैतन्य महाप्रभु को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु को बोले कि बैठो मैं बताता हूं कि वेद का उद्देश्य क्या है, वेद पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो सर्वज्ञता की जो चुनौती आती है वो है जड़ बुद्धि, कि जड़ बुद्धि होने के वजह से बहुत से लोग इस कलयुग में भक्ति का जो सिद्धांत है वो समझ नहीं सकते जड़ बुद्धि के वजह से। और सार्वभौम भट्टाचार्य वो बोलते हैं कि क्योंकि मेरी जड़ बुद्धि थी इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि साक्षात भगवान मेरे द्वार पर आए और मैं भगवान को सिखाने की कोशिश कर रहा था। फिर छठा आभूषण सर्वशक्तिमता, और इसकी चुनौती कि जो सर्वशक्तिमान भगवान और भगवान की भक्ति भी जो सर्वशक्तिमान, परंतु ऐसे सर्वशक्तिमता भक्ति को जब कोई नहीं ग्रहण करता तो एक ही कारण हो सकता है, वो है मंद भाग्य, कलयुग में मंद भाग्य। और इसका उदाहरण है कर्ण, महाभारत से। कर्ण अपने आप को जो इतना शक्तिशाली मानता था कि मैं अकेले पांडवों को परास्त कर दूंगा, और स्वयं भगवान ने जाकर प्रस्ताव रखा और कर्ण को कहा कि कर्ण देखो तुम एक पांडव हो, तुम सबसे ज्येष्ठ पांडव हो, और तुम अगर पांडवों की ओर से लड़ोगे तो अवश्य ही जीतोगे, और यदि तुम जीते तो तुम राजा बनोगे, तुम एक, वो दुर्योधन ने तुमको अंग का राज्य दिया है, तुम उसे लेकर पकड़े हुए हो, तुमको पूरे पृथ्वी का राजा युधिष्ठिर महाराज बना देंगे। कर्ण को क्या करना था, कर्ण को केवल भगवान श्री कृष्ण के उस प्रस्ताव को स्वीकार करना था, नहीं दुर्योधन की दोस्ती को मैं निभाऊंगा। किसकी दोस्ती निभा रहा है, दुर्योधन की दोस्ती। तो कर्ण दुर्योधन की दोस्ती निभाने के लिए परास्त हुआ। क्या था कर्ण का मंद भाग्य, स्वयं भगवान जाकर प्रस्ताव रख रहे हैं, स्वयं भगवान जाकर बोल रहे हैं कि तुम सभी पांडवों के ज्येष्ठ हो और सभी पांडव तुम्हें स्वीकार करेंगे, इतना सुनहरा अवसर भी कर्ण ने गंवा दिया, ये कर्ण का मंद भाग्य था। तो जो कर्ण अपने आप को शक्तिशाली मान रहा था और वो सर्वशक्तिशाली बन सकता था इस प्रस्ताव को स्वीकार कर, उसने सब कुछ ठुकरा दिया अपने मंद भाग्य के वजह से। फिर सातवां आभूषण समशुद्धता, भक्ति जो कि हमें पूर्ण रूपेण शुद्ध कर सकती है, परंतु कलयुग में उसकी चुनौती क्या है, कपट। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है कि वो पतित पावन है, कपट पावन नहीं। तो जो कपटी हैं वो सम्यक रूप से शुद्ध नहीं हो सकते। हाँ, जो पतित हैं वो हो सकते हैं, लेकिन जो कपटी हैं वो नहीं हो सकते। और इसमें उदाहरण पूतना का है कि पूतना वो कपट लेकर आई थी, वो अपना भेष बदलकर भगवान की माता बनकर भगवान को मारने आई थी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना जो कि भेष बदलकर भगवान की माता बनकर भगवान को मारने आई, इसलिए उनको माता तक का दर्जा दिया, लेकिन भगवान ने उसको अपनी माता नहीं बनाया। वो दर्जा दिया लेकिन अपनी माता, उन पूतना के गर्भ से भगवान नहीं पैदा हुए। और आचार्य बताते हैं क्योंकि यशोदा मई देवकी इनके अंदर कोई कपट नहीं था, इसके वजह से भगवान इनके गर्भ से प्रकट हुए एक पुत्र के रूप में। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि पूतना इतना कपट लेने के पश्चात भी भगवान उसको इतना शुद्ध कर सकते हैं तो किमुत श्रद्धया ग्रहणन, कि जो श्रद्धा पूर्वक भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी माता यशोदा, तो उनके विषय में क्या कहना। तो हां, हरिनाम हमको शुद्ध करेगा, यदि कपट भी है फिर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। हमको इससे यह सीखना चाहिए कि यदि बिना कपट के मैं हरिनाम लूं तब मेरे अंदर कितनी शुद्धता भगवान डाल देंगे। दिस इज द लेसन वी शुड लर्न। तो समशुद्धता जो भक्ति का ये आभूषण है, इसके लिए कलयुग में हमारी चुनौती क्या है? कपट, हिपोक्रेसी। और अंतिम जो आभूषण भक्ति का, सर्व उपकारिता। तो सर्व उपकारिता मतलब दूसरों का उपकार भक्ति के द्वारा हो सकता है, न केवल हमारा बल्कि पूरे विश्व का उद्धार भक्ति के द्वारा हो सकता है, इसे कहते हैं सर्व उपकारिता। तो इसकी चुनौती है स्वार्थ। जब हम भक्ति में स्वार्थी बन जाते हैं तो हम भक्ति के इस आभूषण को दूसरों को प्रदर्शित कर नहीं दे सकते। और इसमें उदाहरण है नारद मुनि और दक्ष प्रजापति का, कि दक्ष प्रजापति वो नहीं चाहते थे कि उनके जो 10,000 पुत्र और उसके पश्चात 1,000 पुत्र, टोटल 11,000 पुत्र, वो भगवान के प्रचारक बने। दक्ष प्रजापति क्या चाहते थे? मैंने इनको उत्पन्न किया है, ये मेरे घर में रहे, मेरे परिवार में रहे, मेरे वंश को बढ़ाए। कलयुग में हम बहुत देखते हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरा खून, बहुत बार आकर बोलते हैं ये मेरा खून है, यहां क्या कर रहा है मंदिर में। एक बार एक मेरे को बोल रहे थे एक व्यक्ति, ये मेरा खून है, आपने मेरे खून को लिया है। तो मैंने कहा आपने ब्लड बैंक खोला इधर। और ब्लड बैंक क्या होता है? जब भी आपातकालीन स्थिति में किसी को ब्लड चाहिए तो सब वैरायटी के ब्लड अवेलेबल होने चाहिए ना ब्लड बैंक में, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ये सब होने चाहिए। मैंने कहा इस्कॉन ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? ब्लड बैंक है। तो अलग अलग जो भी अलग अलग खानदानों के खून हैं वो सब एक जगह पर कि आपातकालीन स्थिति में राहत हेतु हम रिलीज करते हैं, खून को रिलीज करते हैं, ब्लड को रिलीज करते हैं। जाओ वहां पर जाकर जो मरीज हैं, अलग अलग जैसे संगम नेर में जितने मरीज हैं वहां पर जाके, 40 गांव में जितने मरीज हैं, लासल गांव में जितने मरीज हैं, नासिक में जितने मरीज हैं, सब अलग अलग जाकर। तो ये है सर्व उपकारिता। लेकिन दक्ष प्रजापति क्या था? मेरा खून। नारद मुनि को क्या कहा? मेरे खून को कैसे लिया? और नारद मुनि वो जो भक्ति का ये जो आभूषण है सर्व उपकारिता, वो ये नहीं देख रहे थे कि ये किसका खून है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, दक्ष प्रजापति एंड नारद मुनि वर बोथ डूइंग द सेम थिंग, दे वर डिलीवरिंग। दक्ष प्रजापति वॉज डिलीवरिंग बेबीज फिजिकली एंड नारद मुनि वॉज डिलीवरिंग देम फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड। सो बोथ वर डूइंग डिलीवरीज। तो दक्ष प्रजापति को वो बकरी का सर क्यों, बकरे का सर क्यों मिला? क्योंकि स्वार्थी, स्वार्थी था दक्ष प्रजापति। और दक्ष प्रजापति वो कोई राक्षसों में उसकी गिनती नहीं थी, प्रजापति था, देवताओं में उसकी गिनती थी, प्रजापतियों में उसकी गिनती थी, परंतु स्वार्थी होने के वजह से, मैं और मेरा, उसके वजह से भक्ति का ये जो आभूषण सर्व उपकारिता वो नहीं प्रदर्शित कर सका। और नारद मुनि ठीक उनके विपरीत। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो आठ भक्ति के आभूषण सर्वव्यापकता की कौन सी चुनौती माया देवी प्रस्तुत करती है? लैक ऑफ गाइडेंस। सहजता की कौन सी चुनौती? टेक इट फॉर ग्रांटेड। सरलता की चुनौती कॉम्प्लेक्सिटी, सुलभता की चुनौती आलस्य, सर्वज्ञता की चुनौती जड़ बुद्धि, सर्वशक्तिमता की चुनौती मंद भाग्य, समशुद्धता की चुनौती कपट या हिपोक्रेसी, और सर्व उपकारिता की चुनौती स्वार्थ या सेल्फिशनेस। तो हम ये समझना है हमको कि ये जो भक्ति के आठ आभूषण हैं, ये भक्ति के आठ आभूषण हमारे ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्होंने पहना रखे हैं, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि माया देवी ने अपने आठ आभूषण जिनकी लिस्ट हमने ली, वो भी तैयार है उन चुनौतियों के साथ। जैसे कि ब्राह्मण पत्नियों ने दीर्घ काल तक श्रवण किया, फिर भी भगवान के दर्शन से पहले चुनौतियां आई। तो चुनौतियां हमारे जीवन में अवश्य ही आती रहेंगी, बिना चुनौती के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें जब भी हमारे जीवन में चुनौती आए, जैसे कि इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है, व्हेन माया देवी, उसमें मैंने माया देवी डाल दिया है, व्हेन माया देवी थ्रो स्टोन्स एट अस, लेट्स पिक अप दो स्टोन्स एंड मेक देम इनटू माइलस्टोन्स। What is a milestone doing? Milestone, it shows way to other travelers. So let us be like these wonderful devotees. जैसे हमने उदाहरण लिया प्रहलाद महाराज, पांडव, श्रील प्रभुपाद, ध्रुव महाराज की, जिन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों को परिवर्तित कर भगवान का दर्शन साक्षात ग्रहण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने आठ आभूषण बताए माया देवी के। जो चौथा आभूषण बताया प्रभु जी, सुलभता भक्ति का, और उसके विपरीत हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते हैं कि सुदुर्लभ भक्ति का वो गुण बताया गया है, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है ऐसा,
कि भक्ति सुलभ है और भक्ति सुदुर्लभ है। देखिए, जब भक्ति को सुदुर्लभ बताया गया है तो उसमें जो मूड है रूप गोस्वामी का वो समझना आवश्यक है। उसमें रूप गोस्वामी का मूड ये है कि रूप गोस्वामी भक्ति को सुदुर्लभा कहते समय उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। रूप गोस्वामी इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ भक्ति बाय सेइंग दैट भक्ति इज सुदुर्लभ. और उसमें वो पॉइंट क्या कहते हैं कि क्यों भक्ति सुदुर्लभ है, क्योंकि जो भक्त शुद्ध भक्ति करता है तो भगवान को अपने आप को देना पड़ता है. उनसे भगवान के पास और कोई अपना खुद का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि भगवान अपना कोई सब्स्टिट्यूट भेज देते हैं. द लॉर्ड हिमसेल्फ हैव टू गिव हिमसेल्फ. तो यदि भगवान को स्वयं देना पड़ रहा है अपने आप को, तो इसमें भक्ति की वैल्यू कितनी बढ़ गई. कहीं पर भी नहीं कहा गया है, चाहे अष्टांग योग हो ज्ञान योग हो, कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि भगवान अपने आप को अष्टांग योगी को देते. इसलिए राधा गोविंद महाराज वो अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि कहीं पे आप नहीं पढ़ोगे कि भगवान योगी वत्सल हैं या ज्ञानी वत्सल हैं. हर समय क्या पढ़ोगे, भगवान भक्त वत्सल है. तो क्योंकि भगवान स्वयं अपने आप को दे देते हैं उस भक्त को, तो इसलिए वो जो भक्ति की महिमा इतनी बढ़ जाती है. तो उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अपने आप को पूर्ण रूपेण नहीं देते सबको. सबको अर्थ जो भक्ति में नहीं लगाया उसको. अब जब इसलिए तो ये जो एक ट्रैप है कि भक्ति सुदुर्लभ है और भक्ति सहज या सुलभ है, ये जो दोनों चीजें हैं ये एक प्रकार से बद्ध जीव को कंफ्यूज भी करते हैं कि कोई चीज जो कि इतनी सुलभ है इतनी वैल्यूबल कैसे हो सकती है कि नहीं. जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र सभी मंत्रों में सबसे महान मंत्र है ये, और कलयुग का युग धर्म है. तो कई लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि इतना सुलभ मंत्र युग धर्म हो सकता है. इतना सुलभ मंत्र मुझे वैकुंठ तो छोड़ गोलोक वृंदावन ले जा सकता है. तो उसके अंदर भगवान एक प्रकार से ये ट्रैप जो बनाए हैं सुदुर्लभा और सुलभता का, उसमें भगवान ये एश्योर कर रहे हैं कि जो भी भगवत धाम पहुंचेगा वो एकदम जो 100% खरा होगा वो पहुंचेगा. और एक तरीका सुलभता समझने का ये है कि भगवान शुद्ध भक्ति के विषय में, अन्य अभिलाषित जो शून्य भक्ति जो है उसके विषय में बोल रहे हैं सुदुर्लभा है. लेकिन भक्ति के जो प्रारंभिक स्टेजेस हैं वो इतने सुलभ हैं कि कोई भी कर सकता है. लेकिन भगवान को पूर्ण रूपेण अपने लिए ले लेना, उसके लिए भक्ति सुदुर्लभा हो जाती है. सो द हाइएस्ट स्टेज ऑफ भक्ति इज सुदुर्लभा, बट द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ भक्ति एनी वन कैन, वेदर अ योगी वेदर अ पापी वेदर ज्ञानी, एनी वन कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ भक्ति. मतलब ये एक उदाहरण से मैं कहूं कि IIT में एडमिशन कोई भी ले सकता है, लेकिन IIT से ग्रेजुएट होके बाहर आना वो सुदुर्लभा हो जाता है ना. तो खैर IIT का एडमिशन भी मुश्किल है, लेकिन भक्ति का एग्जाम्पल हम दें तो भक्ति के स्कूल या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में भगवान ने एडमिशन भी इतना सुलभ बनाया कि सुलभता से कोई एडमिशन ले सकता है. लेकिन पूर्ण रूपेण भगवत धाम जाना, उसके लिए भगवान ने उसको सुदुर्लभा किया. क्यों? ताकि हम उसको वैल्यू करें, इसलिए रूप गोस्वामी ने उसको सुदुर्लभा कहा है. नहीं तो अगर उसको सुदुर्लभा का स्टेज नहीं देते तो फिर सभी लोग उसको इतना कैजुअली लेते कि भाई मैं तो जा ही रहा हूं, हाँ तो पक्का हो गया अभी बस, मैं तो आईआईटी में एडमिशन ले लिया तो मैं ग्रेजुएट तो बन ही जाऊंगा, नहीं। इसलिए ये कॉम्बिनेशन एकदम बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है, इनफैक्ट सुलभता का और सुदुर्लभता का। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उसमें से एक पॉइंट जो था लैक ऑफ गाइडेंस। तो कभी कभी भक्ति में कई भक्तों को ऐसा लगता है कि अभी मुझे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, या काफ़ी हो गया है, या मैं भी परिपूर्ण हो गया। तो ये गाइडेंस कब तक उन लोगों को आवश्यक है?
हमने एग्जाम्पल भरत महाराज क्या दिया, वो तो भाव स्तर पर थे। भरत महाराज का एग्जाम्पल दिया ना, कि भरत महाराज जो कि भाव स्तर पर थे, और राधानाथ महाराज ने अपने प्रवचन में क्या कहा, ओनली इफ भरत महाराज हैड सम गॉड ब्रदर और गाइडेंस नेक्स्ट टू हिम, ही वुड हैव सेव्ड हिमसेल्फ। तो अगर भाव स्तर पर जो पहुंच चुका है उसके लिए भी गाइडेंस आवश्यक है, मतलब भाव के आगे कौन सा स्टेज है, हाँ डायरेक्ट प्रेम है, भाव के आगे डायरेक्ट प्रेम है, लास्ट स्टेज। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर यही है कि हम लोग कौन से स्टेज में अभी तक, पता नहीं श्रद्धा में भी पूर्ण रूप से है कि नहीं। हमारा अलग प्रकार का भाव है, होता ना ये लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, भाव खाता है। तो वो है हमारा भाव। तो एवरी हमारा एवरी स्टेप पर गाइडेंस की जरूरत है हमको। इसलिए भरत महाराज का एग्जाम्पल है कि जिनको भाव स्टेज पर भी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ रही थी, तो फिर हम कौन है? कभी कभी नहीं, बहुत समय उनसे ही आते हैं। ये मेंटालिटी अपने आप में एक चैलेंज है। ये मेंटालिटी कि मुझे पूरे गुरु वर्ग गुरु संप्रदाय ने मुझे अपॉइंट किया है कि बाकियों को चुनौती देने के लिए, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना, लास्ट स्नेयर ऑफ माया, दिस इज ऑल्सो द लास्ट स्नेयर ऑफ माया टू मेक अस थिंक दैट वी आर द मसाया, द डिलीवरर ऑफ अदर्स। They are called Paramatma Vadis. See, none of these yoga processes, they are exclusive of bhakti. When you talk of Ashtanga Yogis or Paramatma Vadis, they are proper Paramatma Vadis only when their Ashtanga Yoga culminates in bhakti. When their Jnana Yoga culminates in Bhakti. Like Krishna says, Bahunam Janmanamante Jnanavanmam Prapadyate. That after many, many Janma of acquiring Jnana, then the result of that when they surrender to me. So whether it is a jnani or whether it is a ashtanga yogi, finally they have to acquire that bhakti, then only they will achieve the supreme destination. Jaya Granthara Srimad Bhagavatam Ki, Srila Prabhupada Ki. Jaya.